ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद के दोनों सदनों से पारित 4 विधेयक राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा प्रमाणित। सरकार आर्थिक विकास और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। और दक्षिण अमेरिका में आंधी के कारण कम से कम 34 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों की बैठक में पारित 4 विधेयकों को प्रमाणित किया है। नेपाल के संविधान की धारा 113 की उपधारा 2 के अनुसार राष्ट्रपति पौड़ेल ने सुरक्षित कारोबार आयन 2063 में संशोधन करने के लिए विधेयक, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार ई कॉमर्स से संबंधित प्रावधान करने के लिए विधेयक, विधान से संबंधित प्रावधान करने के लिए विधेयक और भ्रष्टाचार निवारण आयन 2059 में संशोधन करने के लिए बने विधेयक को आज प्रमाणित किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री बिष्णु प्रसाद पौड़ेल द्वारा प्रस्तुत आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण सुधार और निवेश वृद्धि से संबंधित कुछ नेपाल कानूनों को संशोधन करने के लिए बने विधेयक 2081 प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकृत किया गया। प्रतिनिधि सभा के बहुमत ने उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। विधेयक के सैद्धांतिक चर्चा के दौरान सांसदों के सवाल का जवाब देते हुए उप प्रधानमंत्री पौड़ेल ने कहा कि सरकार को इस विधेयक पर पूरा भरोसा है, ये आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण को सुधारेगा। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक सोमवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। काठमांडू में हिमवत खंड कला साहित्य और संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 17 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया। इस सम्मेलन में हिमवत खंड क्षेत्र की विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, सभ्यताओं और ज्ञान परंपराओं को आत्मसात करते हुए लोक संस्कृति को उजागर करने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में इस क्षेत्र के नेपाली भाषी लोगों को एकजुट होने, लोक संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए अध्ययन और शोध करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। आज बूढ़ा नीलकंठ में आयोजित सम्मेलन के समापन समारोह में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि हिमवत खंड की ज्ञान परंपरा और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए नेपाली भाषी लोगों को एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली, जो इस प्रतिष्ठान के मुख्य संरक्षक भी हैं, उन्होंने कहा कि हिमवत खंड सम्मेलन हमारी संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास और सभ्यता का एक मिलन स्थल रहा है और यहां अच्छी चर्चा हुई है। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में 7 प्रदेशों के साथ साथ भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और तिब्बत जैसे देशों की लोक संस्कृति पर भी चर्चा हुई। इस सम्मेलन में हिमवत खंड क्षेत्र के 100 से अधिक नेपाली भाषी लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में हिमवत खंड क्षेत्र की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसे आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही इस क्षेत्र की विविधता और एकता को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि महिलाओं और पुरुषों की सम्मान भागीदारी से समाज के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय और नेपाल उद्योग परिसंघ द्वारा आज आयोजित महिला नेतृत्व सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाली परंपरा और संस्कृति ने महिलाओं को देवी के समान मानते हुए उन्हें परिवर्तनशील और गतिशील शक्ति के रूप में चित्रित किया है, इसलिए महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देते हुए उद्यम विकास और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किए जाने की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार आर्थिक विकास के साथ साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि कानूनों को काम में बाधा डालने के बजाय विकास में सहायक बनाना चाहिए। उन्होंने सम्मेलन से प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर सरकार की नीतियों, व्यवहार और कानूनों को परिष्कृत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने कहा कि निजी क्षेत्र के सहयोग से औद्योगिकरण को बढ़ावा देने को वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी निकायों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से संबंधित कार्यविधि जारी करने सहित सुधार के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जा रहा है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन के हिमालयी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम की कार्यसूची सार्वजनिक की है। सगरमाथा संवाद के सचिवालय ने आज प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आगामी जेठ 2 से 4 गति तक होने वाले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम की कार्यसूची जारी की। सगरमाथा संवाद के पहले दिन यानी जेठ 2 को उद्घाटन सत्र के साथ साथ हिमालयी क्षेत्र और ग्लेशियर संरक्षण को उच्च पर्वतीय क्षेत्र और समुद्री द्वीपों के भविष्य से जोड़ते हुए इस क्षेत्र में तत्काल उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सगरमाथा संवाद में खाद्य सुरक्षा और कृषि पुनरुत्थान, जलवायुजन्य आपदा और जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थान, हिमालय क्षेत्र में हुए नुकसान को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा होगी। सगरमाथा संवाद सचिवालय ने ये जानकारी दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने स्थानीय तहों से होर्डिंग बोर्ड से आने वाले राजस्व का संकलन स्वयं करने का आग्रह किया है। आज विज्ञापन बोर्ड द्वारा काठमांडू में आयोजित विज्ञापन प्रवर्धन में विज्ञापन एजेंसी की भूमिका संबंधी कार्यक्रम में संचार मंत्री गुरुंग ने ऐसा आग्रह किया। गृह मंत्रालय ने विभिन्न 6 व्यक्तियों की भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का निर्णय किया है। सुप्रीम कोर्ट से जब्त करने का फैसला आने के बाद पूर्व प्रशासक, कर्मचारी और परिवार के सदस्यों आमोनंद मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारी बहादुर कार्की, केशर जंग खड़का और रामाज्ञा चतुर्वेदी के नाम पर काठमांडू घाटी की अलग अलग जगहों पर मौजूद घर और जमीन जब्त करने का निर्णय हुआ है। इसी तरह आपराधिक गतिविधियों से भारतीय नागरिक सरिता गिरी राय द्वारा नेपाल में खरीदे गए घर और जमीन भी जब्त होंगे। ये जानकारी गृह मंत्रालय की कानून महाशाखा के प्रमुख भरत मणि रिजाल ने दी। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले इसका निर्णय हुआ और क्रियान्वयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी का लंबे समय से वे लोग ही प्रयोग कर रहे थे, पर अब जब्त करने की प्रक्रिया को सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया गया है। कम पैसों के निवेश और कम ही समय में अच्छी आमदनी किए जा सकने के कारण सल्यान में व्यावसायिक बकरी पालन करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती गई है। बता दें कि स्थानीय तह द्वारा बकरे की बिक्री में प्रोत्साहन के लिए प्रति किलो 50 रूपये का अनुदान देना शुरू करने के बाद सल्यान के किसान बकरी पालन में जुटे हैं। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदल की रिपोर्ट को साझा किया है। आज मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि आम नागरिकों पर अतिरिक्त भार न पड़ने के हिसाब से बीमा को व्यवस्थित किया जा सकता है और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने कहा कि सुकुम्बासी को जमीन वितरण करना नहीं बल्कि व्यवस्थापन के लिए सरकार काम कर रही है। आज भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 11 में आयोजित भूमिहीन दलित और भूमिहीन सुकुम्बासी के लिए जमीन मालिक दर्ता प्रमाण पूर्जी वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जमीन एक जगह लेकर और फिर बेचकर दूसरे जगह जाकर सुकुम्बासी के तरह रहने वाले परिपाटी को नियंत्रण किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अमेरिका में भयंकर तूफान से कम 34 लोग मारे गए हैं। इस खतरनाक तूफान ने दक्षिण पूर्व के राज्यों में भारी नुकसान किया। कई गाड़ियां पलट गई और कई घरों को नुकसान पहुंचा। टैंकर पावर आउटेज के मुताबिक शनिवार दोपहर को 7 राज्यों में 2,50,000 से ज्यादा मकानों में बिजली नहीं थी। इस राज्यों में मिशिगन, मिसौरी और इलिनॉइस शामिल है। तस्वीरों में दिखाए गए तूफान के कारण नुकसान हुआ है। ये जानकारी तस्वीर के मुताबिक प्राप्त हुई है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद के दोनों सदनों से पारित 4 विधेयक राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा प्रमाणित। सरकार आर्थिक विकास और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री की पी शर्मा ओली का कथन। और दक्षिण अमेरिका में आंधी के कारण कम से कम 34 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।